ओम शांति। आवाज से परे ऐसे लगता है जैसे सभी बाबा के वतन में बाबा के सन्मुख बैठकर बहुत मीठी मीठी रो रिहान कर रहे हैं। बाबा से सभी दिल की बातें करते हो? इन लोगों से बाबा की प्रेम का पत्र लिखवाया है? नहीं। किसी ने बाबा को प्यार से पत्र लिखा है? भट्टी में विशेष करके शाम के समय 4 से 5 के बीच में सभी को कहते हैं कि बाबा को बहुत प्यार से पत्र लिखो। हर संबंध से लिख सकते हैं, जो संबंध जिसको अच्छा लगता है उस संबंध से बाबा को बहुत दिल से प्रेम पत्र लिखो। क्या होगा उसे? बहुत सहज रीति से बाबा के सानिध्य का, समीपता का अनुभव होने लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे बाबा से सन्मुख में बातें कर रहे हैं। और जो दिल की भावनाएं आप लिखना चाहेंगे वो बाबा के पास पहले ही पहुंच जाएंगे। तो कल का दिन आपके पास है, ठीक है? कल सभी बाबा को बहुत प्यार से पत्र लिखना, और पत्र में ये भी लिखना कि बाबा इस महायज्ञ में आकर के मैंने कौन कौन सी आहुति दी। क्योंकि यज्ञ सफल तभी होता है जब सभी अपनी अपनी आहुति डालते हैं। सबसे पहले इसे यज्ञ क्यों कहा जाता? ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र है, फिर इसको यज्ञ की उपमा क्यों दी गई है? और इस यज्ञ का पूरा नाम क्या है? कौन सुनाएगा? एक बस, 2-3 भाइयों ने, माताओं ने, कोई नहीं उठाया इधर। अच्छा, पूरा यज्ञ का नाम क्या है सुनाओ, बोलो। यज्ञ का नाम बताओ। अविनाशी यज्ञ, पूरा नाम बताओ ना। अभी भी अधूरा है। और भाई लोग, अच्छा सुनाओ, पूरा नाम कोई सुना सकता है तो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। ये भी अधूरा है। वो सुना रहे हैं पीछे से। सुना क्या नाम है पूरा? पहले राजस्व, राजाई के लिए, स्वराज्य के लिए राजस्व अश्वमेध, जिसमें अश्व को स्वाहा किया जाए। अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, बाबा ने इस यज्ञ की स्थापना किस लिए की? वैसे दुनिया में जब यज्ञ रचे जाते हैं तो कोई न कोई विपदा को टालने के लिए, कोई बहुत बड़ी आफत आती है, कभी बरसात नहीं पड़ती, कभी बहुत अकाल पड़ जाता है, बहुत अधिक बरसात होने लगती है, कोई भी विपदा जब संसार के ऊपर आती है, भक्ति मार्ग के अंदर विशेष यज्ञ के आयोजन किए जाते थे। अभी भी कोई कोई संस्थाएं यज्ञ पर बहुत जोर देती हैं, यज्ञ रचवाती हैं, यज्ञ में क्या करती हैं, स्वाहा स्वाहा किस चीज को जलाते हैं? वो तो देसी घी को आग में अर्पित करते हैं, जौ तिल ऐसी चीजें आहुति कर देते हैं, उससे भी कुछ फायदा होता है। क्या फायदा होता है? वातावरण शुद्ध होता है। और कई बार जब बहुत भावना के साथ यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ का फल भी दिखाई देता है। नहीं, बरसात पड़ रही होती है और यज्ञ रच दिया, सभी ने उसमें आहुति दी, वो यज्ञ सफल हो जाता, बरसात आ जाती है, बड़े खुश हो जाते हैं। तो भक्ति मार्ग के अंदर तो यज्ञ रचे गए कोई न कोई विपदाओं को, आपदाओं को टालने के लिए। और बाबा ने इस अविनाशी यज्ञ की स्थापना क्यों की? क्यों की है? सारी पुरानी दुनिया को स्वाहा कराने के लिए। क्योंकि पुरानी दुनिया माना ही जहाँ दुख है, अशांति है, लड़ाई है, झगड़े हैं, दंगे हैं, ऐसी दुनिया जो आज रहने लायक नहीं, कलह कलेश की दुनिया है। बाबा कहते हैं जिस दिन से मैंने यज्ञ रचा उस दिन से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। यज्ञ की उपमा क्यों दी गई है? यज्ञ कोई कुंड तो बनाया ही नहीं, यहाँ पर अग्नि तो उसमें है ही नहीं, फिर यज्ञ क्यों कहा है? क्योंकि जब यज्ञ बनाते हैं, कुंड बनाते हैं यज्ञ का, तो उस कुंड के अंदर लकड़ियों को जला करके आग पहले उत्पन्न करते हैं और उस आग के अंदर सबको स्वाहा करते हैं। अब बाबा ने तो ऐसा कोई कुंड बनाया ही नहीं है जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हो और जहाँ पर आकर के हम सब कुछ स्वाहा करें, फिर भी इसको यज्ञ की उपमा क्यों दी है? लगन की अग्नि है और लगन की अग्नि में हम सब अपनी कमी कमजोरियों की आहुति देते हैं। किस लिए आहुति देते हैं? राजस्व, स्वराज्य प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले सबसे बड़े से बड़ी आहुति मैंपन की आहुति है। ये अश्व है मैंपन का, शरीर को आहुति नहीं देनी है। बाबा वैसे अश्व इस शरीर को कहते हैं, शरीर आत्मा का अश्व है, लेकिन आत्मा में जो मैंपन आ गया है, बाबा कहता है इस मैंपन की आहुति दे दो, और ऐसी आहुति दो जो मैं निकलता है वो बाबा 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 में समा जाए। कभी भी मैं और मेरा ये दो शब्द बहुत नुकसान करते हैं। कभी भी मैं और मेरापन उत्पन्न न हो। मैं ये करता हूँ, मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता, मेरे बगैर ऐसे कैसे चल सकता। बाबा कहता ये भी अहम बहम, इस अहम और बहम की आहुति दे दो। सबसे पहले इसको स्वाहा, स्वाहा किया तो फिर कोई चीज भी अगर आग में डाल दी जाए, स्थूल आग में भी अगर कोई चीज डाल दी जाए, या समाप्त हो जाती है या उसका रूप बदल जाता है, परिवर्तित रूप, वही रूप नहीं रहता। तो बाबा ने जो ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है, इस ज्ञान यज्ञ के अंदर सबसे बड़ा यज्ञ है मधुबन महायज्ञ, जहां आप सब आए हो। और इस महायज्ञ के अंदर हरेक को कोई न कोई आहुति जरूर देनी है। देंगे ना सभी? देंगे ना कि नहीं देंगे? सोचना कौन सी आहुति देनी है। इसलिए मैंने कहा कि सभी कल बाबा को प्यार से लिखना कि बाबा मैं ये चीज यहाँ आहुति दे करके जा रही हूँ, फिर वापस नहीं लेना। क्योंकि आहुति दे दी वो भस्म हो गई, फिर वो वापस ना आए। तो जो ऐसी सूक्ष्म कमियां हैं, जो ऐसी कमजोरियां हैं जो आत्मा को बार बार परेशान करती हैं, ऐसी सूक्ष्म कमी और कमजोरियों को चेक करो, भट्टी में बैठते हैं अंतर्मुखता की गुफा में, तो अंतर्मुखी बन करके अपने आप पर नजर डालो, मेरे अंदर ऐसी कौन सी सूक्ष्म कमियां हैं जो मुझे इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देती। उन कमियों की सूक्ष्म आहुति पड़ जाए, निर्विघ्न जीवन बन जाएगी। बड़ी एकदम ऐसे लगेगा बहुत सहज मार्ग है, बहुत सहज हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। सफलता ही सफलता दिखाई देगी, क्योंकि अगर कोई के जीवन में बार बार विघ्न आते हैं तो वह आत्मा निराश उदास दिल शिकस्त हो जाती है, उसको कोई भी कार्य में सफलता दिखाई नहीं देती। कहते हैं जिसमें मैं हाथ डालता हूं उसमें नुकसान हो जाता है। बाबा के बच्चे जिसमें हाथ डाल दें वो कार्य सिद्ध होना चाहिए, सफल होना चाहिए। ऐसे नहीं मैंने ये कार्य हाथ में लिया और इसमें बार बार नुकसान हो रहा है, माना मैंने अपने सूक्ष्म कमियों की, कमजोरियों की, पुराने संस्कारों की, हिसाब किताब की, आदतों की आहुति यज्ञ में नहीं डाली है। तो सबसे पहले बाबा ने ये जो रुद्र यज्ञ रचा है, स्वयं भगवान ने, रुद्र भगवान ने इस यज्ञ में हमारी सब कमी कमजोरियों की आहुति पड़नी चाहिए। लेकिन आहुति देने के पहले चेक जरूर करना कि मेरे अंदर क्या है ऐसा जो मेरे मार्ग में बार बार विघ्न रुकावट डाल रहा है। क्योंकि ऐसे ही लिख दिया कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं आज से ऐसा नहीं करूंगी, और उसको रियलाइज नहीं किया तो परिवर्तन नहीं होगा, बार बार फिर से आएगा, युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए बहुत अंदर से महसूस करके बाबा को सामने रख करके लिख दो, बाबा ये कमी मेरे अंदर है और मैं समझता हूँ ये ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। उसको लिख करके बाबा के यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करके जाना, ठीक है, बाबा के कमरे में रखना और बाबा के कमरे में रख करके कहना, बाबा इस ज्ञान यज्ञ में मैं ये कमी स्वाहा करती हूँ। क्योंकि जब कमियों की स्वाहा करेंगे तब दुनिया की कमी कमजोरियां स्वाहा होंगी। जब तक ब्राह्मण आत्माओं में कमियां हैं, कोई न कोई विघ्न है, कोई न कोई पुराने संस्कार हैं, तब तक विनाश ज्वाला प्रज्वलित नहीं होती। और बाबा हमेशा कहता है, बच्चे तुमको बहुत बहुत रहम आना चाहिए। रहम आता है किसके ऊपर? आजकल एक गीत बजता है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। सारी दुनिया में कितने दुख बढ़ रहे हैं, कितने पाप बढ़ रहे हैं, क्या क्या लगा हुआ है। अगर समाचार खोल करके देखो तो पाप की जैसे नदी बह रही है, विकारों की नदी बह रही है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां उन विकारों के इतने अधीन हो गए, इतने गुलाम हो गए हैं, ये पता ही नहीं चलता इनके अंदर ये विकार आया कहाँ से, इनके अंदर ये क्रोध आया कहाँ से, वो भी कोई न कोई पाप कर रहे हैं। अब ऐसी पाप की दुनिया, जब बाबा कहता है ना पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता है, भर रहा है। लेकिन रहम दिल बाबा के बच्चों को रहम आना चाहिए कि बाबा पहले मैं अपनी कमी कमजोरियों को इस यज्ञ में स्वाहा करूं, मैं आत्मा बिल्कुल पवित्र स्वच्छ जैसा बनाना चाहते हो ऐसा बन जाऊं। तो जब हम स्वाहा कर देंगे तो लोगों को प्रेरणा हमसे मिलेगी और वो भी स्वाहा करेंगे और विश्व परिवर्तन का कार्य सहज संपन्न हो जाएगा। तो इस यज्ञ की रक्षा कैसे की जाए? कहते हैं जब ऋषि मुनि यज्ञ रचते थे तो असुर उसमें बहुत विघ्न डालते थे। सुना होगा विश्वामित्र ने जब यज्ञ रचा तो आसुरी शक्तियों ने, रावण संप्रदाय वालों ने उसमें क्या विघ्न डाले, वो तो दिखाते हैं ऊपर से गोबर डाल देते थे, कीचड़ा डाल देते थे, मिट्टी डाल देते थे जिसमें आग बुझ जाए, यज्ञ इनका न चले। और उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को नियुक्त कर दिया कि तुम इसकी रक्षा करो। बचपन में ही उनको उसकी सुरक्षा के लिए ले आए। बाबा भी कहते हैं जब मैं अविनाशी रुद्र यज्ञ रचता हूं तो कई प्रकार की आत्माएं, सबसे पहला विघ्न ब्राह्मण आत्माएं भी कभी कभी डालने लगती हैं। ज्ञान में चलते चलते अगर किसी भी विकार के अधीन हो गए, मर्यादा का उल्लंघन करने लगे, बैज लगा हुआ है, सफेद ड्रेस पहनी हुई है और किसी भी प्रकार का गलत काम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार जो आज अति में है, अगर उसकी तरफ ध्यान भी गया तो क्या होगा, वो सबसे बड़ा यज्ञ के लिए विघ्न हो जाएगा, लोगों की नजर में आ जाएगा, ये भी ऐसे करते हैं क्या, यहां भी ऐसे होता है क्या, ये तो बहुत ऊंची ऊंची बातें सुनाते हैं, इनका ज्ञान तो बड़ा ऊंचा है। पहले और ये अभी के समय में एक बहुत बड़ा अंतर आया है। पहले के समय में लोग कहते थे इनका आश्रम यज्ञ ठीक नहीं है, वो इनको ठीक तरह से गाइड नहीं करता है, घर घर में झगड़े करा देता है, आश्रम की तरफ अंगुली उठाते थे कि शायद इनको ऐसा पढ़ाया जाता है, ऐसे सिखाया जाता है। लेकिन आज वातावरण में इतना तो बड़ा परिवर्तन आ गया है, जो कहते हैं इनका आश्रम बहुत अच्छा है, इनके शिक्षाएं बहुत ऊंची हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये ठीक नहीं है। पहले व्यक्ति को ठीक मान करके आश्रम पर दोष देते थे और आज कहते हैं कि आश्रम की शिक्षाएं, विश्वविद्यालय की शिक्षाएं तो बहुत महान है, बहुत ऊंची हैं, इनके आश्रम में जाने से तो क्या अनुभव होने लगते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो खिटपिट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये व्यक्ति ठीक नहीं है। इतना अंतर तो अभी आया है ना, दिखाई देता है ना, व्यक्ति के ऊपर दृष्टि जाती है और व्यक्ति माना ही हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं। और कौन है, तो हम सब ब्राह्मण बच्चों की जीवन की धारणाएं, जो कुछ हम उपदेश दे रहे हैं दूसरों को, जो बताना चाहते हैं, बाबा कहता है वो उपदेश न दो लेकिन आपके जीवन में आचरण में आया हुआ हो, आपकी कथनी और करनी समान हो, कहने की भी जरूरत न पड़े कि हमारी क्या धारणाएं हैं। अगर करनी अलग है, कथनी अलग है, रहनी अलग है, तो कोई के ऊपर हमारे ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने परिवार में ज्ञान देना चाहते हो, परिवार वालों को ज्ञान देना चाहते हो, तो वो ज्ञान ऐसे सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनके साथ हम रहे हैं, वो हमारी सब कमी कमजोरियों को, संस्कारों को जानते हैं। अगर हम ज्ञान सुनाएंगे तो कहेंगे पता नहीं कहां से इसको तोते की तरह पढ़ा दिया गया है, कहां से सिखा दिया गया है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि इस परिवार के अंदर ज्ञान सुनाने का तरीका ये है, आपकी जीवन ऐसी बन जाए। अगर जीवन बन गई तो कहेंगे जरूर कि बहुत ऊंची स्थान पर, बहुत ऊंची शिक्षाएं ले रहा है, बहुत अच्छी इसको पढ़ाई मिल रही है, देखो इसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, पहले कितना क्रोधी था, कितना इसके अंदर लोभ वृत्ति थी, कितना इसमें अहंकार था। हमारे पास एक भाई आता था कुछ समय पहले, कहता है मैं अगर अपने ऑफिस में जाऊं और देख लूं ऐसे गुस्से से तो कांच में दरार पड़ जाती थी, इतना मेरा गुस्सा था, इतना गुस्सा था सारा ऑफिस कांपने लगता था, मेरे पांव रखते ही डर जाते थे लोग और कांच भी ऐसे दरार चिटक जाए, इतना गुस्सा था। लेकिन जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूं मुझसे कोई नहीं डरता, मैं जाता हूं ऑफिस में, इतनी शांति, इतना प्यार, इतना अच्छा वातावरण बन गया जैसे मेरा एक परिवार है। इतना बड़ा परिवर्तन देख करके लोग पूछ रहे हैं कि आपको ये किसने सिखाया है, कहां से आप सीख करके आए। एक एक के अंदर से आता है कि मैं भी सीखूं, मैं भी सीखूं, मैं भी सीखूं। ज्ञान सुनाने की जरूरत है क्या, कुछ जरूरत नहीं रही उसको। सब उसके अधिकारी, जितने उसके कार्यकर्ता फैक्ट्री के अंदर थे, वो सब उसको मानने लगे जो आप कहेंगे। कहता पहले गुस्से से काम कराता था, हमारे डर के मारे थोड़ा समय करते थे, और घर से ऑफिस से बाहर आया सब छोड़ करके मस्ती करने लगे, कोई नहीं काम करता था। लेकिन जिस दिन से मैं बाबा का बच्चा बन गया हूँ, मैं इतना निश्चिंत हो गया हूँ, बाबा एक फैक्ट्री तेरी है, तुमको चलानी है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। कहते हो फैक्ट्री मेरी आश्रम बन गई। फैक्ट्री के अंदर 250 लोग काम करते हैं उसकी, लेकिन एक नियम उसने बना करके दिया, इस फैक्ट्री के अंदर कोई भी बीड़ी सिगरेट पीने वाले को अलाउ नहीं है, पैसा कुछ भी लो या न लो, लेकिन इस फैक्ट्री में कोई भी व्यसन करने वाला प्रवेश नहीं कर सकता, और जो फैक्ट्री के अंदर आएगा उसको पहले 10 मिनट मेडिटेशन करना है। बाबा का एक कमरा बना दिया बहुत सुंदर, और जो भी आए उसको पहले वहां बिठाता है, पहले बैठो फिर काम करो। कहता 2 गुना 3 गुना ज्यादा काम हो रहा है, और इतना अच्छी फैक्ट्री चल रही है कि अगर आप पांव रखो हमारी फैक्ट्री के अंदर तो आपको लगेगा ये फैक्ट्री नहीं है, लेकिन एक बहुत सुंदर कोई शांति का कुंड है, स्थान है, कोई हलचल ही नहीं, कोई टकराव नहीं है। और मुझे इतना निश्चिंत बाबा ने बना दिया। पहले मैं बहनों कहता था, जब मुझे निमंत्रण देती थी किस कार्यक्रम के लिए आओ, मेरी युगल जाती थी, मैं नहीं जाता था, मैं कहता था ठीक है इसको जाने दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है, मेरे पास 5 मिनट नहीं है, इतना मैं व्यस्त था। और जिस दिन से मैं बाबा का बन गया, मैंने बाबा को पहचान लिया, उस दिन से मेरे पास टाइम ही टाइम है, जहां बहने कहती वहां उठ करके सेवा में चला जाता हूँ, बाबा फैक्ट्री संभाल रहा है मैं सेवा कर रहा हूँ, है अनुभव ऐसा। लेकिन ये सब कैसे हुआ, जब उसने एक विकार को आहुति दे दिएगी कि मैं इसको छोड़ रहा हूं और मैं इसको जरा भी अपने पास फिर से वापस नहीं लूंगा, कुछ भी हो जाए। तो बाबा कहता है कि बच्चे सेवा का साधन, यज्ञ में सबसे बड़ा सहयोग यही है कि हमारी धारणाएं सबसे अच्छी से अच्छी हों। ठीक है सहयोगी बनना, क्योंकि इतना बड़ा कार्य बाबा का चल रहा है, द्रौपदी का डेगरा गाया हुआ है, सुना है तो द्रौपदी के डेगरे की कहानी, जितने भी आए खाते जाए भंडारा खुट, द्रौपदी माता का डेगरा, यज्ञ में द्रौपदी माँ का गायन है, तो उसके यज्ञ में कोई भी आ जाए चलता फिरता इधर, हजारों संत आ गए, उन्होंने अचानक कह दिया वो वनवा में भूख लगी है मुझे भोजन चाहिए, भगवान को आग्रह किया, भगवान इनको क्या खिलाऊं, मेरे भंडारे में तो कुछ नहीं है, भगवान कहने लगे बच्ची मेरे कुछ तो खिला दे, भगवान भी बोलने लगे मुझे खिला दे कुछ। कहते हैं जब डेगरे से भगवान ने खाया तो उसने एक कणा छोड़ दिया, और उस कणे से इतना अधिक सब तैयार, जो आता गया खाता गया खाता गया खाता गया खुट हो गया। ये भगवान का भंडारा है, ये द्रौपदी का डेगरा चढ़ता है। यहाँ पर कितने हजारों बाबा के बच्चे खा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, यज्ञ चल रहा है, भंडारा चल रहा है, इतने बड़े बड़े डेग चढ़ रहे हैं, सोचा भी नहीं होगा आप लोगों ने कभी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा आश्रम में इतना बड़ा भंडारा निरंतर चलता रहे हजारों लोगों का। हम लोग जब आए थे छोटा सा भंडारा था, छोटा सा मधुबन घर, ये हम शांति भवन भी नहीं था, हम लोग केवल 50-60 रहते थे, और 100 लोग आ जाते थे तो कहते थे बड़ा डेगरा चढ़ेगा, खाना बनेगा भोजन बनेगा, उनके लिए पानी गर्म करना, उनके लिए करना, उसको हम बड़ा डेगरा कहते थे। आज 30,000-40,000 एकदम पहुंच जाते हैं आकर के बाबा के घर में, और तीनों टाइम, ऐसे भी नहीं एक टाइम मिस कर दिया, तीनों टाइम उनको बाबा के घर में भंडारा भोजन मिल रहा है, अखुट भंडारा चल रहा है। कहां से आता है, कोई तो बाबा के यज्ञ स्नेही सहयोगी बच्चे होंगे, आप समझते हो कि ऐसे यज्ञ के अंदर मेरा भी कुछ सहयोग है। बाबा ऐसे सहयोगी स्नेही बच्चों को बहुत प्यार करता है, दिल से प्यार करता है, और मैंने देखा है कि जो जिसके पास होता है गुप्त रीति से यज्ञ के अंदर वो करके अपने आप को बहुत गुप्त रखता है, दिखाता नहीं है। शायद आप सबको पता हो, आज इतना सारा चावल, इतना गेहूं, सैकड़ों बोरी, एक दो नहीं। जब एक दिन बनता है तो हम कभी कभी पूछते हैं भंडारे वालों से, कितना चावल गया, कितना गेहूं गया? कहते 30 बोरी गया, 50 बोरी गया। तो आप समझ सकते हो, अगर 6 महीने सीजन चलती हो तो कितना जाता होगा, कहां से आता है सब, कौन भरपूर करता है? बाबा के जो स्नेही सहयोगी बच्चे हैं, गरीब से गरीब बच्चे हैं, गरीब लेकिन दिल बहुत बड़ी है, गांव के हैं, भोले हैं, किसान हैं, कहते बाबा के घर में हमारा एक बोरी गेहूं तो भेज दो। 50 लोग 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 100 बोरी इकट्ठी कर लेते हैं और इकट्ठी करके पूरा ट्रक का ट्रक भेज देते हैं, जाओ इस सेंटर से आया, इस सेंटर से आया, इस सेंटर से आया, गुप्त दान करते, एक एक बोरी से बाबा का यज्ञ चल जाता है। तो बहुत से बाबा के ऐसे बच्चे, एक चीज नहीं खरीदनी भी पड़ती है, ऐसे नहीं नहीं खरीदना पड़ता है, कोई धन से सहयोगी बनते हैं, कोई कोई ऐसी चीजों से सहयोगी बनते हैं और बाबा का यज्ञ भरपूर हो जाता है। लेकिन जो समय पर मदद करते हैं, जरूरत के समय मदद करते हैं, उनको बाबा मदद देने के लिए बंध जाता है। समझते हैं आप सभी कि मदद किसको मिलेगी, भगवान किसको मदद करेगा? जिसने भगवान के यज्ञ में मदद की है उसके पास कोई कमी नहीं रहती, उसको इतनी गुप्त आशीर्वाद मिलती है, दुआएं मिलती हैं, जो उसका भंडारा हमेशा भरपूर रहता है, क्योंकि उसने भंडारे का ख्याल रखा, भगवान के भंडारे का ख्याल रखा, यज्ञ का ख्याल रखा, इसलिए उसके भंडारे में कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। तो पहले महायज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ बाबा ने रचा है, जहां हजारों भाई बहनों की पालना हो रही है, जहां इतने लोग आ रहे हैं, सुख शांति से रहते हैं और भोजन करते, प्रसन्न होते, दुआएं देते। आज तक आपको बताऊं कि मधुबन के अंदर कभी भी आम खरीदे नहीं जाते, और इतने आते हैं जो सब मधुबन वाले, क्या सबको बाबा के घर से आम मिलता है, जैसे बगीचा अपना हो, कहां से आता है? सब बाबा के बच्चे। अभी अभी भी कल परसों में एक ट्रक सहारनपुर से आया, दशहरी आम का लास्ट, थोड़े थोड़े बच्चे इकट्ठे करके अपने सेंटर पर ट्रक भेज देते हैं, भेज दो बाबा के घर में, चला जाए, कितनी दुआएं उनको मिलती होंगी। जो खाते हैं उनके अंदर से प्यार से निकलता, वाह बाबा के बच्चों ने भेजा है, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यज्ञ के अंदर जिन्होंने गुप्त सहयोग किया, उनको बहुत अंदर की दुआएं जो मिलती हैं वो खुशी का अनुभव कराती। सबसे पहली निशानी ये है, कोई भी प्रकार के योग लगाने में मेहनत उनको करनी नहीं पड़ती, क्योंकि खुशी योग का आधार, दो चीजें हैं, दो चीजें योग का मूल आधार हैं। एक आंतरिक खुशी चाहिए, अगर खुशी नहीं है जीवन के अंदर कभी योग नहीं लगेगा। कोई गम है, कोई दुख है, कोई बात ली हुई है अंदर से, परेशानी है, उदासी है, योग नहीं लगेगा। और दूसरा चाहिए बहुत हल्का, बहुत लाइट, कोई बोझ नहीं है। अगर खुशी और हल्कापन है तो योगी सहज है, सहज बैठेगा उसका योग लग जाए, उड़ जाएगा वो। लेकिन अगर खुशी का अनुभव नहीं है, खुशी तब प्राप्त हुई जब उसने कुछ किया, बाबा के यज्ञ में कुछ सहयोग दिया, तन से दिया, मन से दिया, धन से दिया, समय दिया, अपनी विशेषताएं लगाई, किसी भी प्रकार का, किसी ने किसी भी प्रकार का सहयोग दिया और गुप्त दिया, कभी उसका मैंपन नहीं दिखाया, तो भगवान उसके ऊपर यज्ञ पिता और यज्ञ माता प्रसन्न हो जाते हैं। और जिसने यज्ञ माता और यज्ञ पिता को प्रसन्न कर लिया, आप सोच सकते हो उसकी कोई भी कामना रह सकती है। हम लोगों के जीवन का एक प्रैक्टिकल अनुभव है, शुरू से लेकर के जब से मैं यज्ञ में आया हूं, एक लक्ष्य सदा रखा है, आज 41-42 साल मुझे यहां रहते हो गया, जब आया था 15 साल की उम्र थी मेरी, और आया था ऐसे घर से जहां कभी कोई काम, अपना गिलास भी पानी का अपने हाथ से नहीं पिया होगा, क्योंकि बहुत लाड़ प्यार से परिवार में पला, इकलौता बेटा था, तीन पिताजी तीन भाइयों के बीच में अकेला, बहुत प्यार से परिवार के अंदर पालना हो रही थी। मधुबन में आया, अपनेपन की फीलिंग आई। पहले दिन ही आते ही मुझे एक भाई साथ में था, लकड़ी का ट्रक आया था, बोला लकड़ी खाली करनी है। अब मुझे तो लकड़ी कैसे उठानी ट्रक से पता ही नहीं था। पहले दिन ही मेरे से सारा ट्रक खाली करवाया लकड़ी का। कोई बात नहीं, उनके साथ लग गया। मधुबन वाले भाई थे, प्यार से अपने को बुला के ले गए, चलो सेवा करो सेवा करो सेवा करो। और ऐसी सेवाएं उस समय थी, अभी तो ज्ञान योग सुनाने की बहुत सारी सूक्ष्म सेवाएं हैं, उस समय कोई भी प्रकार की ऐसी सेवाएं नहीं थी। धोबी घाट हाथ से होता था, जो आजकल कहीं कहीं चलता है, तालाब के अंदर धोबी खड़े होते हैं ना, पाटे के ऊपर सू करते हैं, जो वो धोबी घाट था मधुबन के अंदर, जो भंडारे के पास बाथरूम है ना, यहाँ पर हम लोग भट्टी चढ़ाते थे, आग लगाते थे नीचे, ऊपर भट्टी में सोडा साबुन डाल करके कपड़ों को उसके ऊपर रख देते, रात भर भट्टी पकती थी। और सवेरे सवेरे जब खड़े होते थे पाटे के ऊपर 7 बजे, चाहे जितनी ठंडी हो, 2 घंटे के अंदर सब कपड़े साफ, और ऐसे चमकते थे जो कहते थे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कपड़े पैरिस से धो करके आते हैं। सब प्रकार की सेवाएं बाबा ने कराई, और यज्ञ की सेवाएं करने से, यज्ञ में सहयोग देने से, सबसे पहले तो जिसने यज्ञ में तन की सेवा की है उनका तन बड़ा सुंदर कोमल और निरोगी बन गया। अनुभव कहता है कि जिसने यज्ञ में तन लगाया है उनका तन रोगी नहीं हुआ है, बहुत प्यार से बाबा उनकी तन की संभाल करता है। साथ साथ मन जो यज्ञ से दिल से सेवा की, प्यार से अपना समझ के सेवा की, दादी दीदी तो प्रसन्न हुई, ऊपर से यज्ञ पिता प्रसन्न हो गया। तो कभी कभी मैं हंसते हुए कहता हूं लोगों को कि एक वो दिन था जो मैं सबके कपड़े धोता था और 11 साल तक धोए। हमारे साथ ग्रुप था 7-8 भाइयों का, और आज वो दिन है जो एक रुमाल भी धोने की जरूरत नहीं पड़ती। भविष्य फल किसने देखा है, संगम पर ही बाबा ने रिटर्न कर दिया है, सब कुछ धुला धुलाया प्रेस किया हुआ मिल रहा है। यज्ञ पिता प्रसन्न है, यज्ञ माता प्रसन्न है, इसलिए कोई भी सूक्ष्म कामना भी नहीं रह सकती। अगर आपके मन में कोई भी मनोकामनाएं हैं और उनको पूरा कराना चाहते हो तो मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। कहता मांगने वाले को कितना मिलता है, आपके दरवाजे पर भी कोई मांगने आता तो आप कितना देते हो? मान लो कोई बहुत दयालु हो, बहुत रहम दिल हो, बहुत दातापन का संस्कार हो, अगर आ गया तो चलो कोई 1-2 महीने का भोजन दे देगा, उसको कुछ ऐसा पैसा दे देगा, उसको वस्त्र दे देगा, अपने घर के तिजोरी की चाबी तो नहीं देगा ना, देगे? बाबा भी कहता बच्चे तुम मंगता थोड़ी हो, तुम तो मेरे बच्चे हो, तुमने अगर यज्ञ को अपना समझा है, ये मेरा घर है मेरा यज्ञ है, तो यज्ञ पिता आपको अपने आप सब प्राप्तियां करा देगा, आपकी सब मनोकामनाएं भगवान पूरी कर देगा, कोई भी इच्छा रहेगी नहीं। हम लोगों के जीवन का अनुभव है, कभी भी आज तक अगर मैं कहता हूं संकल्प भी नहीं करो ना तो चीज आ जाएगी, कहां रखेंगे? अगर सूक्ष्म संकल्प भी उठ जाता है वो चीज हाजिर हो जाती, कैसे आती है मुझे पता ही नहीं है। इतना यज्ञ पिता प्रसन्न है, माता प्रसन्न है, क्योंकि उसके यज्ञ की बहुत दिल से हर प्रकार की सेवा, तन से मन से समय से। धन तो हम लेकर के कुछ नहीं आए, लेकिन अगर बचत की यज्ञ के अंदर वो धन की सेवा हो गई है। आप लोगों ने, प्रवृत्ति वालों ने यज्ञ में भेजा और यज्ञ निवासियों ने उसको अगर ठीक तरह से सफल किया, व्यर्थ नहीं किया, बचाया उसको, बहुत प्यार से उसको संभाला, तो उनके यज्ञ के धन के खाते में यज्ञ में जमा हो गया। तो तन मन धन समय जो बाबा की यज्ञ में लगाते हैं, दिल से लगाते हैं कि अपना समझ करके लगाते हैं, उनको कभी भी कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं आती। मन भी इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, जो 1 सेकंड में मन मनाभव हो जाए। यज्ञ रचते हैं तो मंत्र जपते हैं ना, और बाबा ने हमको सदा के लिए मंत्र दे दिया मन मना भव, और कोई मंत्र करने की रचने की जरूरत नहीं। यज्ञ में स्वाहा करो, कमी कमजोरियों को स्वाहा करो और मंत्र जाप करो, मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है, ये मनमना भाव है। इस मनमना भाव के मंत्र से एक बाबा के साथ जब प्यार जुट जाता है, स्नेह होता है, तो अपने आप बाबा सब बच्चों को सब प्राप्तियां करा देता है। संकल्प उठाने की ही जरूरत नहीं, इच्छा रखने की भी जरूरत नहीं, ऐसी स्थिति बन जाती जैसे मैं आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या हूं। सत्ययुग में इच्छाएं नहीं होंगी अलग बात है, संगम पर कोई मेरे अंदर ऐसी इच्छा न उत्पन्न हो। हर प्रकार की इच्छाएं बाबा ने पूरी कर दी, कोई संकल्प रचने की जरूरत ही नहीं रहती, आवश्यकता है पूरी कर देता है। बाबा कई बार कहता है इच्छाएं तो बहुत फास्ट गति से जन्म लेती हैं। अगर मैं किसी बच्चे की 10 इच्छाएं पूरी कर दूं तो दूसरे दिन उसके पास 50 इच्छाएं आ जाएंगी। इच्छाओं का जन्म ऐसे होता है जैसे सर्पणी के बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती, आवश्यकताएं सब पूरी हो जाती। इच्छाएं अंदर चेक करो, मेरे अंदर क्या इच्छाएं रह गई हैं। संगम युग पर बाबा मिल गया, इतना ऊंचा ज्ञान मिल गया, इतना अच्छा परिवार मिल गया, इतनी ऊंची पढ़ाई मिल रही है, ऐसी श्रेष्ठ पालना मिल रही है, फिर अब क्या चाहिए मुझे। जो कुछ है बाबा ने दिया है, भाग्यवान हूं जो बाबा ने दिया है इतना सब कुछ। एक कहानी सुना दूं थोड़ी सी, कभी भी ये नहीं कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है। कई आते हैं बाबा के गरीब बच्चे, बहुत गरीब हैं, सच्चे हैं, लेकिन और बाबा को कह देते हैं बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। तो बाबा कहते बच्चे कोई बात नहीं, लेकिन इतना अक्ल जरूर सिखाता है कि अगर खेत में बोने का समय है, बीज बोने का समय है, और वो किसान कहे कि मेरे पास तो घर में खाने के लिए नहीं है, बोऊंगा क्या, तो आज खाने के लिए नहीं है तो क्या बाद में खाने के लिए आ जाएगा। वो समझदार अगर है तो खाने से भी अपने बीज को बचाता है और बचा करके खेती में डाल के आता है कि अभी समय है बोने का, और अभी बो दूंगा तो जब कटेगी फसल तो हमको 1000 मिलेगा। बाबा भी हम सबको ये समझ देता है कि ये खेत संगम युग पर कर्म क्षेत्र पर इस खेती में जो कुछ बो देंगे, जो शक्तियां लगा देंगे, जितना लगा देंगे उसका कई गुना होकर के रिटर्न मिल जाएगा। बाबा देने के लिए बंध जाएगा, आपका सब इंश्योर्ड हो जाएगा। इसलिए कभी नहीं कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है, और कुछ नहीं कह के सो गए तो जब फसल कटेगी, जब सबको मिलेगा तो आपको पश्चाताप होगा, आंसू आएगा, मैंने तो बहुत गलत कर लिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि बोने से इतना मिल जाता है। तो ये संगम युग का समय बीज बोने का समय है, 84 जन्म की गारंटी। 21 जन्म तो बाबा कई बार कहता है, लेकिन आज तक भी इस जन्म में भी कोई कमी है क्या? कलयुग के अंतिम जन्म में भी हम सबको बाबा ने ऐसा तन दिया है, ऐसा मन दिया है, इतना धन दिया है, कोई कमी तो नहीं रखी है, कोई भिखारी थोड़ी बनाया है। 84 जन्म के अंत के समय में हम बैठे हैं, तो इसके पहले के जन्म कितने अच्छे होंगे विचार करो। लेकिन ऐसे भाग्य बना कैसे? इतने भाग्यवान जरूर संगम पर कुछ बोया है तब तो बना है। इस बोने के समय में कभी भी मुख से संकल्प में भी ना आए कि मैं क्या करूं, मेरे पास है ही नहीं। एक सत्यनारायण की कथा सुनाता हूं। एक बार मैं एक जगह भट्टी कराने के लिए गया था आंध्र प्रदेश में, वहां बाबा का एक बहुत सुंदर मंदिर था जिसका नाम था सत्यनारायण स्वामी का मंदिर। सारी ड्रेस देवताओं की थी लेकिन फेस बिल्कुल ब्रह्मा बाबा से मिलता जुलता था, सफेद मूछ थी, कभी देवताओं को मूछ दाढ़ी नहीं दिखाते। लेकिन स्वामीनारायण जो सत्यनारायण स्वामी थे उनकी ड्रेस देवताओं की थी और चेहरा एकदम मनुष्य जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा खड़ा है। तो मुझे बड़ी उत्कंठा हुई कि मैं मंदिर में जाऊं देखूं। और जब मैं मंदिर में गया तो उस मंदिर के अंदर बहुत सारे युगल नए नए कथा सुन रहे थे, सत्यनारायण की कथा चल रही थी। तो मुझे तो कभी मैंने कभी सुनी नहीं सत्यनारायण की कथा, हमारी बहनें भी सुनाती हैं भक्ति के अंदर बहुत गया हुआ है सत्यनारायण की कथा, हर पूर्णमासी पर करते ही हैं। तो उन्होंने, हमने उनसे पूछा एक कथा का क्या रहस्य है, तो कलावती लीलावती की कहानी सुना करके बताने लगे। कहा बाबा, हमारा सत्यनारायण स्वामी सामने आया हुआ है, बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आया हुआ है। कहते हैं जब वो बहुत बड़ा व्यापारी समुद्र के रास्ते से बहुत कुछ भर करके नाव में आ रहा था, हीरे जवाहरात मोती, तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, देखूं इस क्या कहता है, क्या है इसका। और वो जब सामने आया तो उसको लगा कि पता नहीं कौन आ गया, भिखारी जैसा बूढ़ा ब्राह्मण था, बड़े साधारण रूप में सामने आया। उसने पूछ दिया, हे सेठ जी, इसमें क्या है? तो उन्होंने कह दिया, इसमें तो कुछ नहीं है, लत्ता पत्ता है। तो उसके मुख से निकल गया तथास्तु। क्या हुआ? जो भूत कुछ लेकर के कमा करके आया था वो सब कुछ लत्ता पत्ता हो गया। वो घबरा गया, ये क्या हो गया? हम सभी भी ये बहुत ध्यान रखें। मैं कहानी का सार ये सुना रहा हूं, ये सत्यनारायण की दरबार है और सत्यनारायण स्वामी बूढ़े रूप में ब्रह्मा बाबा हमारे सामने है। कभी भूल से भी नहीं कहना मेरे पास कुछ नहीं है, बाबा जो कुछ है सब तेरा है, ये तन तेरा है, ये मन तेरा है, ये धन तेरा है, लेकिन तेरा कहकर के अमानत में कभी ख्यानत नहीं करना, पक्का है वो भी। अगर दिल से कह दिया तेरा है तो तेरा कह दिया तो उसको कभी भी इधर उधर व्यर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अमानत है वो। फिर कहता है बच्चे मैं क्या करूंगा, मैं तो बिंदु हूं, मैं तो ऊपर रहता हूं, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं तुम्हारा, लेकिन जो कुछ तुम्हारे पास है इसको सही दिशा से यूज करो, सही रूप में यूज करो, ये प्रभु की अमानत है। तो ध्यान रखना, ये तन उसकी अमानत है, इस तन को हम किसी भी गलत कार्य में कभी भी उपयोग में नहीं ला सकते, किसी भी इस पैरों को किसी गलत मार्ग पर नहीं ले जा सकते, ये उसकी अमानत है, भगवान की अमानत मुझे संभालने के लिए मिली है, संभालो अच्छी तरह से, जितना इससे सेवा ले सकते हो ले लो, कर लो। कल किसने देखा है? हम लोगों को तो यही रहता है, कल किसने देखा है, जो करना है आज कर लूं, अगर ये चांस आ गया अभी कर लूं, मेरे पास ये गिनती नहीं है कि मैं 8 घंटा सेवा करता हूं या 10 घंटा करता हूं, कई लोग गिनती करते रहते। तन अच्छा है, कल पता नहीं क्या हो जाए, किसी की सेवा लेनी पड़ जाए, जितना है उतना सेवा कर लूं, कम से कम भाग्य तो बन जाएगा, कल किसने देखा है? भगवान ने रुद्र यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में अगर मेरा ये तन लग जाएगा तो अपने आप ये तन निरोगी बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, अगर कोई हिसाब किताब होगा आएगा, कोई बात नहीं, चुक तो हो जाएगा, सहज दर्द की महसूसता नहीं होगी। हम देख रहे हैं दादियों को, उन्होंने सेवा दिल से यज्ञ की है, हिसाब किताब शरीरों के आए हैं सबके सामने, कोई भी ऐसा नहीं है यज्ञ में जिसके आगे शरीर के हिसाब किताब ना आए हों, लेकिन कभी भी उनसे पूछ लो, गुजार दादी से पूछ लो, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी थे उनसे पूछो, जानकी दादी से पूछो, इतनी बीमारी होती है, कभी भी उनके मुख से ये नहीं निकला मैं बीमार हूं, मुझे दर्द है, मैं क्या करूं, डॉक्टर सामने खड़ा है पूछ रहा दादी कुछ क्या हो रहा है, बैठ बिल्कुल ठीक, मुझे कुछ नहीं हो रहा है दादी, कहीं दर्द? कोई दर्द नहीं, सबकी दुआएं हैं, ये दादियों के जवाब रहे हैं हमेशा। डॉक्टर मुंह जाता है कि इनको दवाई क्या दूं, तो कहते मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि उनके पास दुख दर्द है ही नहीं, तन को लग रहा है कि बीमार हैं, इनको नली लगी है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, इनको ये है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे को कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल बाबा की गोद में हूं, बहुत आराम से हूं, कोई भी प्रकार के मुझे रोग नहीं, बीमारी नहीं, ये शक्ति कहां से आई? क्योंकि वो तन से सेवा की, इसलिए तन उनको कभी दुख नहीं दे रहा है, परेशान नहीं कर रहा है, मस्त जीवन है। मन से सेवा की है, मन एकदम स्थिर है, एकाग्र है, भटकता नहीं, भटकाता नहीं है, बाबा के कार्य में मन को लगाया है, मन मनाभव होकर के रहे हैं, मन से दिल से यज्ञ की संभाल की है, स्वच्छ है, पवित्र है, कंट्रोल में है। धन की कभी कमी आ ही नहीं सकती है जिसने धन से कार्य किया है बाबा के यज्ञ। जिसने भी किया है अगर उसने दिल से किया है सहयोग के रूप में कि बाबा के यज्ञ में मेरा जाए, गुप्त लगे, जितना मैं सफल करूं उतना भाग्य मेरा बन जाएगा, तो कभी भी उसके पास धन की कमी नहीं आ सकती, ना आई है। हमेशा महसूस होता है कि एक देता हूं हजार आ रहा है। एक भाई ने एक नियम बनाया, मैं आपको एक कहानी बताता हूं और भी प्रैक्टिकल की बातें हैं। एक डॉक्टर था, बॉम्बे में रहता था, दोनों मियां बीबी डॉक्टर थे और इतने पक्के बाबा के बच्चे। उन्होंने एक यहाँ कोठी भी बनाई, भी अभी समर्पित किया, यज्ञ में दे दी। उस डॉक्टर का एक नियम बन गया, कहता उस समय 1000 के नोट नहीं थे, 500 के नोट थे, बड़ी नोट, कि जो हमारे हॉस्पिटल में बड़ी नोट आएगी वो बाबा के लिए मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। जितनी बड़ी नोट आई पहले नंबर में उसको अलग करता गया, और मास में जब इकट्ठी हो जाती, 2-4 लाख इकट्ठे हो गए, बाबा की यज्ञ में चुपचाप भेज दिया कि दादी बड़ी नोट जितनी हो बाबा की है, वो उस पर मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन जितनी छोटी नोट आई उससे बहुत अच्छी तरह से मेरा हॉस्पिटल चल रहा है, मेरा परिवार चल रहा है, कोई कमी नहीं पड़ रही। एक नियम बना लिया और इतना सुखी, इतना प्रसन्न, इतना खुश रहता था। दोनों के दोनों आते थे, उनका चेहरा देखो, दिल से किया यज्ञ के अंदर। कई बाबा के ऐसे गुप्त बच्चे हैं कि कुछ भी हो जाए पहले बाबा, पहले बाबा का घर, बाबा अपने आप सब देगा, वो तो दाता है, उसको क्या चाहिए। अगर मैंने दिल से कोई सहयोग दिया है उसका रिटर्न 1000 गुना करके दे देगा। ऐसे बाबा के बड़े गुप्त बच्चे जो बाबा की यज्ञ को चला रहे हैं। हमारी गरीब बच्चों की देखो, लोगों को लगता ही नहीं है ऐसे कैसे यज्ञ चलेगा, इतना बड़ा कहां से आता होगा, कैसे आता होगा, कोई हिसाब किताब रखने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कैसे हो रहा है सब कुछ। ऐसे बाबा के दिल वाले बच्चे हैं जो तन से, मन से, धन से, समय से, अपनी हर विशेषता से मैं बाबा के लिए हूं बस। ये जीवन की अंतिम श्वासें बाबा के लिए हैं। हमेशा लक्ष्य रखो, अगर हम बाबा के लिए करेंगे तो बाबा अपने आप सब कुछ भरपूर करके दे देगा। इसलिए यज्ञ पिता और यज्ञ माता, मैं एक और दूसरी बात सुनाता हूं, इनको एक दूसरा नाम भी दिया गया है। कल्प वृक्ष का चित्र देखा आप सबने, कल्प वृक्ष के चित्र के अंदर अष्ट रत्नों के साथ मम्मा और बाबा बैठे हैं और इनको नाम मिला है, एक को कहते हैं कपल मुनि और दूसरे को कहते हैं कामधेनु मां, ऐसा है ना, कपल मुनि, कामधेनु मां कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं। कपल मुनि इसलिए कहा है, कपल कहते हैं जोड़े को, ये ब्रह्मा बाबा कपल है, शिव बाबा उसके साथ साथ अलग नहीं होता, शिव बाबा कहता है ये मेरी युगल है, ये माँ है मैं बाप हूं, दोनों साथ साथ रहते हैं। और उसकी बेटी वो तो कहते गायत्री कामधेनु, लेकिन वो जगत अम्बा माँ है कामधेनु, और उसके हम सब बच्चे हैं। अब जिसकी माँ कामधेनु है उसकी कामनाएं रह सकते हैं, पूछ सकते हो अपने आप से, माँ कामधेनु सब कामनाएं पूरी करने वाली, कहते उस कामधेनु गाय के आगे कोई चला जाए तो हर कामना उसकी पूरी हो जाती थी, अब गाय कैसे पूरी करेगी, सोच सकते हो। ये हमारे माता पिता कामधेनु बनकर हम सबको इतनी सब प्रकार की प्राप्तियां करा रहे हैं जो कोई भी कभी संकल्प में भी अप्राप्ति का नाम नहीं रह सकता। कलयुग के अंदर हम सब रह रहे हैं और कलयुग के अंदर सब प्राप्तियां सबको हो ऐसा नहीं हो सकता है। हम सबका ये अनुभव कहता है संगम युग पर जो सतयुग में नहीं प्राप्त हो सकता वो भी अभी प्राप्त है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीन प्राप्तियां सतयुग की गाई हुई हैं। सतयुग में देवताएं एकदम निरोगी हैं, कोई भी प्रकार के डॉक्टर की जरूरत नहीं, एवर हेल्दी हैं, और इतना अखुट संपत्ति है जो संपूर्ण वेल्दी हैं, कोई भी प्रकार के धन की कमी नहीं है, सोने गिन्नियों से सारा भंडारा भरपूर है, अखुट है, अखंड है, और इसलिए उनका जीवन हैप्पी खुशनुमा है, कभी कोई चीज की कमी नहीं है, इसलिए प्रसन्नता सदा है। संगम पर हम सब पूछें, ये तीनों चीजें मुझे बाबा ने प्राप्त कराई हैं। अविनाशी संपत्ति हम सबके पास है, और इतनी अखुट संपत्ति है जिसके अगर चिंतन में नशे में रहो तो हमारे जैसा साहूकार कोई भी नहीं। बाबा ने एक बार लिखवा दिया था अखबारों में, लिख दो ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। लोग सोचने लगे ओम मंडली में इतना पैसा कहां से आ गया, छोटी सी संस्था है, 300-400 लोग हैं, कोई भी इसमें पैसा देने वाला भी नहीं है, और लिख रहे हैं अखबारों के अंदर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ओम मंडली। बाबा ने कहा बच्चे स्थूल धन तो इसके पाई पैसे की चीज है, वो तो आ जाएगा कल चला जाएगा, उसकी संपन्नता की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो धन है वो कोई के पास नहीं, और प्रूफ है उसका। जब ये बेगरी पार्ट यज्ञ में चला है, कुछ भी यज्ञ में धन नहीं था, और बाबा ने 400 बच्चों की पालना की है, चार आना नहीं है भंडारी के अंदर, और 400 बच्चे पले हैं पक्के, जो थे जो बहुत निश्चय बुद्धि थे वो अचल रहे, अडोल रहे। पेपर आए, सुना होगा आज कहानी, बहुत सारे पेपर आए यज्ञ के, लेकिन जो उनके पास यज्ञ के प्रति प्यार था बहनों में, और अविनाशी संपत्ति से प्यार था कि मेरे पास इतना अखुट बाबा ने दिया है, बांटना शुरू कर दिया, गए ज्ञान रतन बांटे, अपने चरित्र से, चरित्र का बल, ज्ञान का बल, गुणों का बल, जो बल था उस बल से गए और सेवा शुरू किया, और आज उसका ये फल हम देख रहे हैं। सब कुछ बाबा ने भरपूर कर दिया, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी, और अभी भी फैलाने की जरूरत नहीं। किसी भी जो भी शुरुआत हुई यज्ञ की सेवाओं की, उसके अंदर दो विशेषताएं थी, बहने गई हैं, कभी भी अपने लिए जो कुछ कोई देके गया कभी अपने पास नहीं रखा। सुना होगा आपने, कोई एक बार आया, बहन जी भोग लगाओ, ब्रह्मा भोजन देसी घी का डब्बा ले आया, बहनों को मिल गया देसी घी का डब्बा, उठाया और यज्ञ में भेज दिया। मैं बाबा पहले, यज्ञ पहले, मैं पीछे, मैं क्या खाऊंगी। उन्होंने अपना वही रसा बनाया और एक आलू डाली, दो आलू डाली और नमक डाला और खा लिया, क्योंकि था ही नहीं कुछ। लेकिन अगर कोई ने दिया तो यज्ञ से इतना प्यार उनका था कि ये बाबा को, यज्ञ को, बस यही दो बात है, बाबा और यज्ञ, बाबा और यज्ञ, अपने लिए कुछ नहीं रखा। उससे यज्ञ की स्थापना हुई है, त्याग और तपस्या से। इतना बहनों का त्याग था कि अपने लिए कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा के लिए है, और आज यज्ञ के अंदर सब कुछ बाबा ने भरपूर कर दिया। आज यज्ञ सबकी पालना कर रहा है, और उस दिन बच्चों ने बाबा के यज्ञ में मदद की, और जिन्होंने मदद की उनको आज बाबा उसका रिटर्न कर रहा है, सबको महलों में रखा है, इतने अच्छे अच्छे सेंटर बना के दिए, ये बाबा अपने आप उसका रिटर्न कर रहा है। सत्युग में महल मिले वो किसने देखा, संगम पर बाबा ने अपने बच्चों को महल दिए, आराम से रख रहा है, क्योंकि बच्चों ने त्याग करके बाबा के यज्ञ में सहयोग दिया। तो सदा ध्यान रखना कि जितना बाबा के ज्ञान से स्नेह है, पढ़ाई से स्नेह है, परिवार से स्नेह है, वैसे उतना ही बाबा के यज्ञ से मेरा स्नेह है। जो कुछ आता है, कई माताएं हैं, जो कुछ आएगा पहले बाबा बेटा है, पहले बाबा के लिए जाएगा, पहले मधुबन में जाएगा, पहले सेंटर पर जाएगा, बाद में बच्चे खाएंगे, कभी कमी नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से अगर आप बाबा के यज्ञ से और बाबा के परिवार से स्नेह रखेंगे और सहयोगी बनेंगे तन से, मन से, धन से, तो बाबा आपके सब भंडारे भरपूर कर देगा। यज्ञ आपका है, बाबा हमेशा कहता है यज्ञ किसका है, ये मधुबन किसका है, बाबा कहता बच्चों का है, बच्चे कहते बाबा का है, किसी की दीवार पर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं, लिखा है किसी पर? आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, एक किसी ने पत्थर भी लगाया होगा ना संगमरमर का, तो मार्बल का, उस पर भी लिखा होगा फलाने फलाने स्वर्गीय का ये पत्थर है। भगवान का इतना बड़ा यज्ञ, शांतिवन है, ज्ञान सरोवर है, मधुबन है, सब स्थान देख लो बाबा के, कहीं पर किसी की एक पट्टी रखी है कि किसका है? लिखा है कहीं? देखा है किसी का? ये बाबा का है और बाबा कहता है मेरे बच्चों का है, बच्चे इसको प्यार से संभाल रहे हैं। तो हम सब बाबा के यज्ञ को संभाल भी रहे हैं, अपनापन भी है कि ये मेरा है, लेकिन मेरे की ममता नहीं, इसलिए दुख नहीं है। ममता दुख देती है। अगर आपने भी लौकिक में कोई स्थान पर ममता रख दी मेरा है, तो सब दुखों का कारण मेरा है, ये मेरा है, कुछ हो गया तो क्या होगा, हाय हाय करने लगेंगे। कहते एक सेठ जी थे ना, सारी जिंदगी उन्होंने खूब झूठ छल कपट करके बहुत पैसा कमाया और 4 मंजिल 6 मंजिल की मकान बढ़ा करके खड़ा कर दिया, खुद रहते झोपड़ी में थे, लेकिन इतना झूठ बोल करके, इतना मेहनत करके कमाई की, और कमाई करके जब बिल्डिंग खड़ी की तो बड़े खुश होते थे, ये तो मेरे पोतरे धोतरे आएंगे, रहेंगे आराम से, दुआएं देंगे, ये मेरी है, बहुत रग थी उसके अंदर। अचानक कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें आग लग गई, और जब वो बिल्डिंग जलने लगी तो उसको देख करके उनका दिल जो है एकदम परेशान दुखी हो गया, तड़फने लगा, हाय 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 अब क्या होगा, मेरी सारी जिंदगी की कमाई मेरी आंखों से जल रही है, अब मैं घी के क्या करूं। बेचारे के प्राण एकदम निकलने लगे, तड़फने लगा। बच्चा उसका समझदार था, वो आया दौड़ कर, क्या हुआ बाबूजी? अरे बच्चा क्या बताऊं, मैंने तो अपने पोतरों के लिए धोतरों के लिए इतनी मेहनत की, इतना झूठ चोरी पाप किया और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, आज वो मेरे सामने जल रही, अब मेरा रहना क्या फायदा, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। वो बड़ा समझदार था, कहता नहीं बाबूजी, आपको पता नहीं है, ये तो मैंने बेच दी थी, ये तो मेरी यही नहीं, ये देखो मेरे हाथ में चेक है, एक कागज का टुकड़ा दिखा दिया उसको, ये तो मेरे हाथ में चेक है। अच्छा बेच दी, मेरी नहीं है? जब कहा मेरी नहीं है, बस उसकी परेशानी खत्म हो गई, खुश हो गया कि मेरी तो है ही नहीं, जलने दो, ये है मेरापन। जब तक मेरेपन की रग है तब तक सुख शांति नहीं हो सकती, वो परेशान करता रहेगा। इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास है, बाबा ने दिया है बहुत कुछ है, कोई कहीं नहीं कहना मेरे पास नहीं है, नहीं तथास्त हो जाएगा, ध्यान रखना, जो कुछ है सब बाबा तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। सफल करना, सफल कर लो जो है, सफल हो जाएगा तो खुशी खुशी से प्राण तन से निकलेंगे, और अगर रह गया मेरेपन की रग रही तो जब शरीर छूटेगा ना तो वही याद आएगा, भगवान याद नहीं आएगा, वही याद आएगा कि मेरा तो यहाँ पैसा पर दबा हुआ है, यहाँ रहा हुआ है, यहाँ मैंने छिपा के रखा हुआ है, बुद्धि कहाँ जाएगी? कहते हैं जहां धन होता है ना मन वही जाता है, तन के साथ मन नहीं रहता है, लेकिन जहां धन होता है वहां बार बार जाता है। इसलिए दिखाते हैं जब कोई सेठ अपना मकान पैसा जमीन के अंदर गाड़ देता है तो जब शरीर छोड़ता है तो सांप बन करके वहां पहरा देता है, वहीं घूमता रहता है वो। इसलिए बाबा कहता है ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी को दबा करके नहीं रखना, जो कुछ है सफल कर लो, कल किसने देखा, पोतरे दोतरे आएंगे तो उनकी तकदीर वो अपने साथ लेकर के आएंगे, आप उनको निकम्मा क्यों बनाना चाहते हो, वो भी तो अपना कुछ करके कमाएंगे। इसलिए जो कुछ है, तन है, मन है, धन है, समय है, बाबा के कार्य में लगा करके, यज्ञ सेवा में दान करके, सेवा करके अपना भाग्य बना लो। ये भाग्य बनाने का संगम चल रहा है, बीज बोने का संगम है। इसलिए यज्ञ रक्षक अपनी धारणाओं से बनना, और यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी बड़े दिल से, बड़ी सेवा करके सहयोगी बन करके बन सकते हैं, फिर बाबा आपको मदद करने के लिए बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सच्चे त्यागी तपस्वी सेवाधारी यज्ञ स्नेही बन करके बाबा की दिल से दुआएं ले लो, दुआएं लेने का समय चल रहा है। ओम शांति।